ईजिंग साइकिल का अंत, आरबीआई के जून विराम का निवेशकों के लिए क्या मतलब है? हर्षल दसानी द्वारा। मुख्य बातें, आरबीआई ने जून 2026 में लगातार तीसरी बैठक में रेपो रेट 5.25% पर बनाए रखा, न्यूट्रल स्टांस बरकरार रखा और प्रभावी रूप से 2025 की शुरुआत में शुरू हुई ईजिंग साइकिल को बंद कर दिया। इस साइकिल में फरवरी से दिसंबर 2025 के बीच चार चरणों में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई, जिससे रेट 6.50% से 5.25% पर आया। गवर्नर संजय मल्होत्रा की पहली कटौती फरवरी 2025 में आई 6.50% पर लगभग दो साल की होल्ड के बाद। रेट के स्थिर रहने की संभावना के साथ गिरती दरों की अनुकूल हवा खत्म हो गई है। अब रिटर्न सस्ते पैसे से नहीं बल्कि आमदनी और स्टॉक चयन पर टिका है। बॉन्ड यील्ड, रुपया और एफआईआई फ्लो जो टैक्स छूट से जुड़े हैं, ये आगे देखने वाली प्रमुख चीजें हैं। 5 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने वही किया जो लगभग सभी को उम्मीद थी। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखा और स्टांस न्यूट्रल रखा। फरवरी, अप्रैल और जून 2026 की द्विमासिक बैठकों में लगातार तीसरी बार बिना किसी बदलाव के। अधिकतर सुर्खियों के लिए कहानी यहीं खत्म हो जाती है। हमारे विचार में यहीं से असली दिलचस्प कहानी शुरू होती है, क्योंकि यह विराम चुपचाप उस ईजिंग साइकिल के समापन का संकेत देता है जो 2025 की शुरुआत में शुरू हुई थी, और यह बदलता है कि निवेशकों को आने वाले महीनों के बारे में कैसे सोचना चाहिए। हम यहां तक कैसे पहुंचे? विराम को समझने के लिए उस रास्ते पर नजर डालना जरूरी है जो यहां तक ले आया। फरवरी 2025-25 बीपीएस से 6.25%, अप्रैल 2025-25 बीपीएस से 6.00%, जून 2025-50 बीपीएस से 5.50%, दिसंबर 2025-25 बीपीएस से 5.25%। भारत का रेपो रेट चक्र 2023-2026। कब निर्णय? रेपो रेट फरवरी 2023 शिखर अंतिम वृद्धि 6.50%, 1 फरवरी 2025-25 बीपीएस 6.25%, 2 अप्रैल 2025-25 बीपीएस 6.00%, 3 जून 2025-50 बीपीएस स्टांस से न्यूट्रल 5.50%, 4 दिसंबर 2025-25 बीपीएस 5.25%, फेब जून 2026 होल्ड। लगातार तीन बैठकें 5.25%, 4 रेट कटौतियां, 1-4 कुल 125 बीपीएस की ईजिंग देती हैं। आरबीआई दिसंबर 2025 की कटौती के बाद से 5.25% पर बना हुआ है। फरवरी 2023 में अपनी अंतिम वृद्धि के बाद आरबीआई ने रेपो रेट को लगभग दो साल तक 6.50% पर बनाए रखा, जब वह मुद्रास्फीति के स्थिर होने का इंतजार कर रहा था। मोड़ फरवरी 2025 में आया, जब नव नियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लगभग 5 साल में पहली कटौती की और रेट को 6.25% पर ले आए। अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट और आए, और जून 2025 में बड़े 50 बेसिस पॉइंट की कटौती ने रेट को 5.50% पर खींच लिया और स्टांस को अकोमोडेटिव से न्यूट्रल में बदल दिया। इसके बाद आरबीआई ने अगस्त और अक्टूबर में रुककर दिसंबर 2025 में अंतिम 25 पॉइंट कटौती की, जिससे रेपो रेट 5.25% पर आ गई। कुल मिलाकर एक साल से भी कम समय में 125 बेसिस पॉइंट की ईजिंग। तब से आरबीआई हर बैठक में फरवरी, अप्रैल और अब जून 2026 में होल्ड पर रहा है। एक साथ देखें तो कटौतियां उस खिड़की में आगे आगे की गई थी। जब मुद्रास्फीति असामान्य रूप से कम थी और रुपया अधिक स्थिर था, और विराम तब आए जब वह परिदृश्य बदलने लगा। जून का फैसला कोई ताज़ा विकल्प कम है और पिछले साल के अंत में आरबीआई जिस स्टांस में बैठा उसकी निरंतरता अधिक। आरबीआई अभी होल्ड क्यों कर रहा है? होल्ड के पीछे का तर्क सीधा है। एक बार जब आप यह मान ले कि ईजिंग साइकिल अपना काम कर चुकी है, 125 बेसिस पॉइंट दे चुकने के बाद आरबीआई को और कटौतियों से विकास को समर्थन देने की सीमित गुंजाइश दिखती है, और वह चाहता है कि पहले की कटौतियां उधार दरों और मांग में अपना असर दिखाएं, बजाय इसके कि ऐसी मुद्रास्फीति तस्वीर में नई उत्तेजना जोड़ी जाए जिस पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है। अधिकांश दबाव अब भारत के बाहर से आ रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष ने कच्चे तेल को ऊपर धकेला है, और जो देश अपनी अधिकांश ऊर्जा आयात करता है उसके लिए यह जल्दी घरेलू कीमतों में तब्दील हो जाता है। रुपए पर भी दबाव पड़ा है, जो मई में 97 के करीब पहुंचने के बाद डॉलर के मुकाबले 95.8 के आसपास रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है, और आरबीआई इसे थामने के लिए भंडार खर्च कर रहा है। सामान्य से कम मानसून खाद्य कीमतों पर और जोखिम डालता है। सब मिलाकर हाल की तिमाहियों की बहुत कम मुद्रास्फीति एक स्थायी विशेषता कम और एक चरण जो समाप्त हो रहा है अधिक लगने लगती है। आरबीआई ने अब FY27 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को 5.1% तक बढ़ा दिया है, और हमारे विचार में जोखिमों का संतुलन अभी भी उससे ऊपर की तरफ है। भारत अकेला ईजिंग नहीं कर रहा। इंडोनेशिया, फिलीपींस और श्रीलंका सहित कई तेल आयातक समक्षों ने अपनी मुद्राओं की रक्षा के लिए पिछले साल दरें बढ़ाई हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने 2026 में जिद्दी मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए 3 बार दरें बढ़ाई हैं। नीति के कड़े होने की यह वैश्विक लहर आरबीआई के लिए दूसरी दिशा में जाना कठिन बनाती है बिना रुपए पर और दबाव डाले। यही कारण है कि हम इसे एक सहज होल्ड की बजाय सतर्क होल्ड के रूप में पढ़ते हैं। आगे की कटौतियों का दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन उसमें से गुजरने की बार स्पष्ट रूप से ऊंची हो गई है। लिक्विडिटी का संकेत एक महत्वपूर्ण विवरण है जो अक्सर मुख्य रेट पर ध्यान में खो जाता है। आरबीआई रेट स्थिर रखते हुए बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी जानबूझकर सहज रख रहा है। नीति से ठीक पहले उसने वेरिएबल रेट रेपो नीलामी के माध्यम से ₹17,445 करोड़ डाले, तो जब वह मुद्रा की रक्षा और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को लंगर डालने के लिए रेट को जहां है वहां रखता है, वह यह भी सुनिश्चित करता है कि क्रेडिट बहता रहे। बॉन्ड बाजार ने संदेश समझ लिया है। 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड 7% के करीब मंडराती हुई उन निवेशकों को दर्शाती है जिन्होंने मान लिया है कि दरें जल्दी नहीं उतरेंगी। हमारे लिए स्थिर नीति दर और पर्याप्त लिक्विडिटी का यह संयोजन रेट के फैसले से ज्यादा आरबीआई के इरादों के बारे में बताता है। दूसरा मोर्चा, विदेशी पूंजी को आकर्षित करना। आरबीआई अकेले नहीं चल रहा। राजकोषीय मोर्चे पर सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ी है। उसने एक अध्यादेश जारी किया है जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी विदेशी संस्थागत निवेशकों FII को सरकारी प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज और पूंजीगत लाभ दोनों पर टैक्स से मुक्त करता है। उद्देश्य है 2026 के भारी विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्प्रवाह को पलटना, जो अब तक लगभग ₹2.1 लाख करोड़ हो चुके हैं, पिछले साल की रफ्तार से काफी ऊपर, और रुपए पर कुछ दबाव कम करना। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अब तक विदेशी निवेशकों को इन प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज पर 20% टैक्स देना पड़ता था पूंजीगत लाभ कर के ऊपर, जिससे उनका कर पश्चात रिटर्न बुरी तरह घट जाता था। दोनों को एक साथ हटाने से भारतीय सॉवरेन ऋण वैश्विक निवेशकों के लिए कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है। अगर यह बॉन्ड बाजार में विदेशी पैसा वापस लाने में सफल रहा तो यह यील्ड और मुद्रा दोनों को ऐसे ढंग से आसान कर सकता है जो आरबीआई के लिक्विडिटी ऑपरेशन अकेले नहीं कर सकते। इस पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि मौद्रिक और राजकोषीय दोनों प्राधिकरण स्पष्ट रूप से रुपए को दो दिशाओं से समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? निवेशकों के लिए निष्कर्ष अपरिवर्तित रेट से ज्यादा स्पष्ट है। बाजार का एक बड़ा हिस्सा महीनों से अगली कटौती का इंतजार कर रहा है और हम उस उम्मीद के आधार पर पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे। जब पैसे की लागत लंबे समय तक ऊंची रहती है तो वे व्यवसाय अच्छा करते हैं जो वास्तविक मांग, क्षमता और मूल्य निर्धारण शक्ति पर बढ़ सकते हैं, न कि सस्ते उधार पर। हम बाजार के कैपेक्स और ऊर्जा पक्ष को प्राथमिकता देना जारी रखते हैं। पावर, धातु और वे मध्यस्थ जो बाजारों में अधिक भागीदारी से लाभ उठाते हैं, जहां कमाई वॉल्यूम और मांग से होती है न कि आरबीआई के अगले कदम से। हम उन रेट संवेदनशील उपभोग नामों पर अधिक सतर्क हैं जिनका मामला उधार लागत के घटने पर भारी निर्भर है। इस माहौल में बैलेंस शीट की गुणवत्ता और कमाई की स्थायित्व अगले नीति फैसले की दिशा से अधिक मायने रखती है। फिक्स्ड इनकम पक्ष पर नई टैक्स छूट बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज और पूंजीगत लाभ दोनों अब एफआईआई के लिए टैक्स मुक्त होने के साथ भारतीय बॉन्ड विदेशी खरीदारों के लिए वास्तव में अधिक आकर्षक हो गए हैं और विदेशी मांग की वापसी आरबीआई के होल्ड पर रहने के बावजूद धीरे धीरे यील्ड को नीचे खींच सकती है। आगे की राह, अगला कदम किसी भी दिशा में अब FY27 की दूसरी छमाही का प्रश्न अधिक लगता है और यह लगभग पूरी तरह से तेल और रुपए के टिकने पर निर्भर होगा। अगर दोनों शांत हो जाते हैं तो आरबीआई आराम से होल्ड पर रह सकता है और समय के साथ ईज करने की गुंजाइश वापस पा सकता है। अगर नहीं होते तो रेट बढ़ोतरी जो कुछ महीने पहले असंभव लगती थी एक वास्तविक संभावना बन जाती है और यह एक परिदृश्य है जिसके लिए आज कुछ ही पोर्टफोलियो तैयार हैं। फिलहाल आरबीआई ने धैर्य चुना है और जिन परस्पर विरोधी हवाओं का वह सामना कर रहा है उन्हें देखते हुए यह एक उचित फैसला है। निवेशकों का काम केंद्रीय बैंक से राहत का इंतजार करना नहीं है बल्कि उन व्यवसायों को अपनाना है जो चाहे वह राहत आए या न आए अच्छा कर सकते हैं। यह निवेश सलाह या किसी प्रतिभूति को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। भारत का रेपो रेट चक्र 2023-2026 डार्क वर्शन। यह सामान्य जानकारी है, कोई निवेश सलाह नहीं।